प्यारे भाई और बहन, हम पहुंच गए हैं हमारी क्लास नंबर 31, जिसका नाम है तंबू की पढ़ाई, मिलाप वाले तंबू की पढ़ाई। तो ये ऐसा कुछ तंबू था, इसकी फोटो देख लो। मैंने लड़कों को बोला था लेके आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं। ये था तंबू, इसके चारों ओर घर बसे हुए थे और ऐसा था तंबू, ठीक है। और ऊपर से एक लाइट आती थी जिसे बोला जाता है शकीना ग्लोरी। शकीना ग्लोरी स्वर्ग से दिन के समय बादल के जैसे और रात के समय आग के जैसे हमेशा मौजूद रहती थी इस तंबू में। तो आज बड़ी डिटेल में हम तंबू की पढ़ाई करेंगे और इसमें छिपे हुए बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ज्ञान समझेंगे। तो आज हम बड़ी खास चीज, परमेश्वर ने जो बोली मूसा को बनाने के लिए, मूसा को बोला एक तंबू बनाने के लिए उजाड़ में, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये तंबू के बारे में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन की जो इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने बोला मूसा को, उसके बारे में पढ़ते हैं। निर्गमन 25 का 8 से लेके 9 तक, निर्गमन 25 का 8 और 9।
और वे मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए कि मैं उसके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना।
तो परमेश्वर ने मूसा से बात की और मूसा को छोटी से छोटी बात बताई कि उसको कैसे बनाना है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसी तरीके से ही, मतलब उसको बनाना, कोई बदलाव नहीं करना है। ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। 40 में भी पढ़ लो ये बात,
इसका
40-25 की 40।
और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है।
तो बोलते सावधान रह के, कोई भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो जो चीजें इस्तेमाल होंगी, जो कपड़ा इस्तेमाल होगा, जो पर्दे में लगेगा, दीवारें बनेगी, वेदियां बनेगी, उसमें जो ये धातु का काम है, ये कारीगरी का काम है, ये सारा बड़ी सावधानी से, जैसे मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, वैसे ही करना। और ये सारी डिटेल्स हमें 25 से लेके 40 चैप्टर तक सारी मिलती है, ठीक है। तो मूसा को जैसा परमेश्वर ने बोला था, ऐसा ही मूसा ने बनाया और अंत में तंबू बन के तैयार हो गया, जिसके बारे में पढ़ते हैं हम कुछ, निर्गमन 39 का 43 में।
तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया।
तो जैसा जैसा आज्ञा मिली थी वैसा वैसा उन्होंने कर दिया और तंबू तैयार हो गया। अभी तंबू जो था ये बीच में था, सेंटर में, जैसे बोलते हैं ना इजराइल के सेंटर में, गिनती 2 का 2।
इसराइल मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें।
तो जो डेरे थे वो क्या थे, चारों तरफ, चारों तरफ मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जो तंबू था वो सेंटर में था और इसके चारों ओर क्या थे, उनके डेरे, घर, घरों ने घेरे हुए, जैसे
और
देखते
जो उनके इसराइलों के पूरे बने हुए थे,
हैं 12 खानदान जो थे वो
बारह खानदान
सारे इसके इर्द गिर्द थे।
तीन तीन का बनाया था ना पर्सन, तीन तीन ग्रुप का, तीन
हाँ।
तीन ग्रुप का।
तो अभी इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये जो तंबू बनाया, तंबू के इर्द गिर्द बोला डेरे लगाओ, इस सारे का क्या महत्व है, इसका क्या मतलब है? तो इसका उत्तर पढ़ते हैं हम इब्रानियों 8:5। जी
वे स्वर्ग में की वस्तुओं की प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तब तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बना।
तो ये जो तंबू था परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला, ये एक नमूना था किसकी? स्वर्गीय वस्तुओं का, स्वर्गीय अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं, स्वर्ग का एक नमूना धरती पे। हाँ, तो चलो अब ये स्वर्गीय नमूना तो था, स्वर्गीय चीजों की बातें हो रही हैं, आत्मिक बातें हैं, तो इनको आत्मिक तरीके से ही समझना है। तो लेकिन पहले पढ़ लेंगे ये तंबू क्या था, कैसे बना था, कितना ऊंचा था, कितना चौड़ा था, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। निर्गमन 27:9 से लेके 19 तक। अभी ये बात समझ आ गई कि ये तंबू तो था, तो ये तंबू, लेकिन ये सिर्फ प्रतिबिंब था, एक परछाई थी किसकी? स्वर्गीय चीजों की। 9 से लेके 19 तक।
फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो, और उसके लिए 20 खंभे बने।
तो जो लंबाई है वो 100 हाथ और 20 खंभे, ऐसे 20 खंभे लगने हैं। 100 हाथ एरिया यानी 150 फुट, 150 फुट एरिया में 20 खंभे लगने हैं। आगे,
और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने।
तो बाहर जो सामान लग रहा है वो पीतल, पीतल क्या होती है? सोने जैसे दिखता है ना, झाल, सोने का डुप्लीकेट।
और खम्भों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो, और इसी प्रकार आंगन क्षेत्र की ओर की लंबाई में से 100 हाथ लंबे पर्दे हो।
तो अभी दक्षिण और उत्तर दोनों 100-100 और 20-20 खंभे, 150 फुट लंबाई उत्तर दक्षिण, ठीक है, और 20-20 खंभे, ठीक है। आगे,
और उनके लिए भी 20 खंभे और इनके लिए भी पीतल की 20 खाने हो, और उन खंभों की कुंडे और पट्टियां चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो।
सो पश्चिम, अभी पश्चिम, ठीक है, पश्चिम कितना? 50 हाथ यानी 75 फुट, और उसमें कितने खंबे हैं? 10,
उनके लिए 10 खंबे,
और
खाने भी 10 हो। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ,
तो पूरब की ओर भी 50 हाथ यानी वही चौड़ाई कितनी होगी? 75 फुट, 75 फुट चौड़ाई और 10-10 खंबे
की हो। आंगन के द्वार की एक और 15 हाथ के पर्दे हो, और उसके लिए खंबे 3 और खाने 3 हो। दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, और उनके भी खंभे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाया जो नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़े का कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो, उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हो।
तो जो दरवाजा है वो पूरब की तरफ है, जिसमें 4 खंभे होने चाहिए और 4 खाने होने चाहिए, ठीक है।
आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की।
तो ये आंगन की बात हो रही है, जो जैसे ये आंगन है ना आपका, सारा उसकी चौड़ाई अंदर से,
और उसके कनात की ऊंचाई 50 हाथ की हो,
नहीं
हाँ उसकी जो होगी ना लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की, और उसके कनात की ऊंचाई 50 पांच आती हो सॉरी, उसकी कनात बटी सूक्ष्म शनि के कपड़ों की बने बने और खंभे के खाने पीतल के हो।
तो ये सारी डिटेल दी है, बीस खंभे इस तरफ, 20 खंभे इस तरफ, 150 फुट लंबाई, 75 फुट चौड़ाई और 5 हाथ यानी 7.5 फुट ऊंचाई, 7.5 फुट ऊंचाई होनी चाहिए जो बाहर पर्दे लगे हुए हैं, बाहर वाले पर्दे
जो एंट्रेंस पर,
जो नो नो ये वाले जो बाहर जो पर्दे हैं ना ऐसे, इनकी 7.5 फुट ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने, 20 20 40 और 20 60 60 खम्भे और पूर्व की दिशा की ओर गेट है ना, ये सारी डिटेल्स हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये 7.5 फुट जो ऊंचाई है ये एक नॉर्मल इंसान जो हो उसकी ऊंचाई से बहुत ऊपर है, नॉर्मल 6 फुट होता है तो वो देख नहीं सकता अंदर क्या है, बाहर से अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे, और जो गेट बना है वो 30 फुट चौड़ा होना चाहिए और 4 खानों पे होना चाहिए, 4 खाने बने होने चाहिए, 4 खंभे और 4 खाने। ठीक है, और उसमें जो कपड़ा लगना है गेट में वो नीला, बैंजनी और किरमची, लहू किरंग जैसा। तो एक ही रास्ता है, ये बहुत सुंदर दरवाजा है जिसके थ्रू कोई जा सकता है तंबू के अंदर। तो ये है बाहरी स्टोरी तंबू की कि तंबू कैसे बना था। तो ये सब क्या है, ये बहुत बड़ी आत्मिक बातें हैं, ये स्वर्गीय वस्तुओं का स्वरूप है, ये स्वर्गीय वस्तुओं की परछाई है, ये आम आदमी के समझने की बातें नहीं है, ये बहुत गहरी बातें हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके अभी इनका आत्मिक मतलब समझते हैं। ठीक है, तो जैसे तंबू जो सेंटर में था और उसके इर्द गिर्द जो थे वो क्या थे, डेरे, उनके डेरे थे, इसका मतलब क्या है, पूरी मनुष्य जाति, पूरी मनुष्य जाति जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में है, चारों दिशाओं में क्या हुई है, फैली हुई है। ये अभी तंबू क्या है, स्वर्गीय वस्तु, तो ये परमेश्वर के ज्ञान से बाहर है, ये तंबू के क्या है, बाहर है, ये स्वर्गीय वस्तुओं के ज्ञान से क्या है, बाहर है, ये परमेश्वर के वचन के ज्ञान से क्या है, बाहर है। ठीक है, क्या है, बाहर है। तो इसीलिए उस दीवार की जो ऊंचाई है वो 7.5, जो पर्दे की ऊंचाई है वो 7.5, इसलिए कि बाहर का आदमी या बाहर की आत्मा रखने वाला इंसान परमेश्वर की गहरी बातों को नहीं समझ सकता, वैसे ही जैसे 6 फुट वाला इंसान 7.5 फुट ऊंचा होके नहीं देख सकता कि अंदर क्या है। सही, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि संसारिक आत्मा रखने वाला इंसान, संसारिक बुद्धि रखने वाला इंसान परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की योजना की, स्वर्गीय वस्तुओं की बातें समझ ही नहीं सकता, वो परमेश्वर के ज्ञान से बाहर है। ये बात लागू हो रही है अभी इस वाक्य में। ठीक है, पढ़ लो ये बात साफ साफ, पहला कुरंथियां 2 बाप उसकी 14 आयत।
परंतु शारीरिक मनुष्य,
देखो शारीरिक मनुष्य
परमेश्वर के आत्मा की
बातें
ग्रहण नहीं करता,
नहीं करता,
क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें,
उसकी दृष्टि में पागलपन है
और ना वे उन्हें जान सकता है, जान सकता है।
क्यों?
क्योंकि उनकी जात आत्मी दृष्टि से होती
है। जब तक आत्मा नहीं आता है,
दो की चौदह
तब, जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं मिलता तब तक परमेश्वर के वचन की बातें मूर्खता लगती हैं, नहीं समझ सकता, उसके बस की बात नहीं है। तो ये है संसारिक मनुष्य की, शारीरिक मनुष्य की कहानी, जो परमेश्वर की आत्मिक चीजों की बातें नहीं समझ सकता जब तक वो परमेश्वर से पवित्र आत्मा ना पाए। और अभी पूरे लोगों पे पवित्र आत्मा पाने का समय नहीं है, अभी सिर्फ कलीसिया का पवित्र आत्मा पाने का समय है। तो ये है एक तरह की स्थिति, ये है डेरों में परमेश्वर के ज्ञान से बाहर अंधकार की स्थिति में, अविश्वास की स्थिति में। ठीक है, तो चलो अभी अगर अंदर जाना है तो कैसे जाना है? दरवाजे से जाना है, कूद के भी, कूदी नहीं मारनी है, दरवाजा ही है एक चीज जिसके जरिए से तंबू के अंदर जाके देखा जा सकता है कि उसमें क्या क्या है। तो चलो दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। पूरब की तरफ दरवाजा है, नीले बैंगनी और क्रिमची रंग का। ठीक है, तो ये दरवाजे का क्या मतलब है? दरवाजा, दरवाजा भी एक आत्मिक चीज है। वो क्या है दरवाजे का मतलब, पढ़ते हैं यूहन्ना 10 बाब उसकी 9 आयत।
द्वार मैं हूँ,
दरवाजा मैं हूँ,
यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा,
देखो,
और चारा पाएगा।
14:6 में भी पढ़ लो, ये है द्वार। तो द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। 14:6
यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ।
मार्ग
सत्य
और जीवन, ये वचन आंदोलन, दरवाजा, दरवाजा मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ। तो वो दरवाजा जो है, जो वो मार्ग है जिसके द्वारा तंबू के अंदर जाया जा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर की बातों में एंटर ही नहीं हो सकता, क्योंकि मार्ग एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए आगे क्या बोलता है, कोई भी मेरे पिता के पास नहीं आ सकता, मेरे द्वारा ही आ सकता है। पढ़ लो ये पूरा वचन।
और तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ।
नहीं, 14:6
यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँचता।
तो प्रभु यीशु मसीह ही है वो रास्ता जो परमेश्वर के साथ हमारा समझौता करवाता है। नहीं तो परमेश्वर नहीं जानता है तुम कौन हो, क्या हो, मेरे लिए कुछ नहीं हो। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ही है वो रास्ता जो परमेश्वर के साथ वो करता है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा ही हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा देने का फैसला करता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो अभी दरवाजे पे ही बड़े 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 खास सबक है सीखने के लिए, क्योंकि दरवाजा कौन है?
यीशु मसीह,
प्रभु यीशु मसीह। अभी ये दरवाजा जो बना है वो कौन से? वाइट कपड़ा और उसमें तीन रंग, रेशमी कपड़े पे तीन रंग, कौन कौन सा? बैंगनी, नीला और किरमची। यही ना, बस किरमची खून जैसा लाल। ठीक है, तो ये जो रेशमी कपड़ा होता है, रेशमी कपड़े का भी मतलब होता है वो जो तंबू के बाहर लगा है ना सारा कपड़ा, वो वाइट कपड़ा है, रेशम का कपड़ा, वाइट लिनन, मतलब वाइट लिनन लाइन वाला कपड़ा, रेशमी कपड़ा। तो उसका मतलब क्या है ये पढ़ लो बात। प्रेरितों के काम 10:43
उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा
उसको उसके
नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी।
जो कोई विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा क्या मिलेगी?
पापों की क्षमा मिलेगी।
तो ये जो कपड़ा है ना, कपड़ा, वाइट कपड़ा, वाइट कपड़े का मतलब है पवित्रता और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, साफ साफ सुथरी धार्मिकता और प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता। तो जब दरवाजे से कोई अंदर जाता है तो उसको क्या मिल जाती है? एक वाइट कवरिंग, मान लो कपड़ा वाइट कपड़े के आर पार देख सकते हैं ना हम, मान लो अगर कपड़ा है तो जो तंबू के अंदर खड़ा रहेगा आंगन में तो ऐसा लगेगा जैसे उसको वाइट चीज में घेरा हुआ है, क्योंकि उसको कवरिंग मिल गई। तो इसी तरीके से ये भी है कि एक पापी जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास दिखाता है उसको उसके पापों की क्षमा मिल जाती है और कवरिंग मिल जाती है प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता की। सही, प्रभु यीशु मसीह के जरिए उनको उनके पापों से क्या मिल जाती है, माफी मिल जाती है और वो पाप के धब्बे जो हैं वो ढक जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं। तो एक तरह का ये है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास हमारी तरफ दीवारें, एक पापी की तरफ उस पापी को ढक देता है वाइट कपड़े से, रेशम के कपड़े से। अभी ये तो होगी बात, ये अभी आपने देखा होगा, अगर क्या बोला, चार खंबे होने चाहिए और चार ही खाने बनने चाहिए, सही। तो अभी ये कैसे हो सकता है, ये करने के लिए एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मान लो ये चार खंबे हैं, ये चार खंबे हैं, ठीक है, हो गए चार खंबे, लेकिन खाने कितने हैं,
खाने भी चार ही
है। कैसे,
एक
दो
तीन, तीन ही आ रहे हैं,
लेकिन चौथा खाना बनना है तो
एक और लगाना पड़ेगा,
ठीक है, तो चार खाने बन जाएंगे।
लेकिन उसमें तो बोला चार खंबे और चार ही खाने चाहिए।
हाँ वो बताता हूँ ना, बताता हूँ उसका क्या है। तो ये चार खाने बनने के लिए वो दस खंबे हैं ना, दस दस खंबे हैं, चौड़ाई में दस खंबे हैं पूरब की तरफ, और ऐसे दस खंबे लगे हुए हैं, तो चार पे गेट बनना है, ठीक है। लेकिन खाने भी चार ही होने चाहिए, अगर चार ही रहेंगे तो चार खाने नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये चार और पांचवे की सपोर्ट होनी चाहिए, पांचवे खंबे की क्या होनी चाहिए, सपोर्ट, तब जाके कितने खाने बन जाएंगे, एक दो तीन और
नहीं,
बस चार खाने बनने हैं ना, चार, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, सपोर्ट किधर से भी ले लो। इसका मतलब है कुछ, ये भी आत्मिक बात है, ऐसे भी वो नहीं है कुछ भी परमेश्वर ने, इसका मतलब क्या है, दरवाजा, ये क्या है, दरवाजा, और ये कौन है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपकी जान पहचान पता कौन करवाता है, चार सुसमाचार, कौन कौन से, मत्ती मरकुस यूहन्ना और लूका, ये चारों ही हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में डिटेल में बताते हैं। और जब आप भी नए आए होंगे इस मसीह में, आपको यही बोला होगा ये चार पढ़ो, तो इनको बोलते चार सुसमाचार। ये है प्रभु यीशु मसीह की इंट्रोडक्शन यानी जान पहचान। लेकिन एक और है जो इनको सपोर्ट दे रहा है, पांचवा खंबा है जो इनको सपोर्ट दे रहा है, वो कौन है, पौलुस, 14 पत्रियां पौलुस की, वो इन चारों गॉस्पल को क्या दे रही है, सपोर्ट दे रही है। तो इसका मतलब ये है, चार सुसमाचार और जो पांचवा खंबा है जो इनको सपोर्ट दे रहा है, होल्ड करके रखा हुआ है इन चार कॉर्नर को, चार खंबों को, वो है पौलुस की गवाही। एक तिहाई हिस्सा, 14 पत्रियां पौलुस ने दी हैं और सारी गवाही दी है किसकी, प्रभु यीशु मसीह की। तो इन चार, उनका मतलब ये है, चार सुसमाचार और पांचवी सपोर्ट किसकी, पौलुस की, जो इनको पकड़ के खड़ा हुआ, जो इसको पीछे से सपोर्ट दे रहा, हाँ ये बातें सच हैं, ये ठीक है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। अभी इस गेट पे ही थोड़ा, अभी समय गेट पे ही हम लगा रहे हैं, गेट पे जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ उसमें कौन कौन से रंग हैं, तीन रंग,
बैंगनी नीला और किरमची।
सबसे पहले किरमची, खून, किरमची का मतलब होता है बलिदान। प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा संसार का छुटकारा किया, इसलिए वो रंग है लाल, किरमची। उसके बाद दूसरा रंग है नीला, नीला क्या है,
राजाओं का रंग,
नीला है आकाश, इसका मतलब होता है वफादारी, परमेश्वर वफादार है अपने वायदों के प्रति। ये नीला रंग, जब भी परमेश्वर की बात आती है हम किधर देखते हैं, नीले रंग का मतलब है वफादारी, परमेश्वर की वफादारी। क्योंकि आकाश का रंग क्या है, नीला है। और इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी था परमेश्वर का वफादार पुत्र। तीसरा जो रंग है वो है बैंगनी। बैंगनी रंग का मतलब होता है राजाओं का रंग, राजाओं का। तो प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो ये तीनों मिला के बनता है दरवाजा। तो देखो कितनी गहरी गहरी बातें हैं, ये समझ से परे है, आम इंसान की समझ से क्या है। तो ये होगी बाहरी बात, अभी हम गेट तक।
हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो रंग यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह के बगैर हम दरवाजा यीशु मसीह है, उसके बगैर हम एंटर नहीं कर सकते। ये तो
यीशु मसीह के बिना स्वर्ग में एंट्री नहीं है।
मार्ग मतलब मार्ग ही जानते थे लोग ना,
तो लेकिन दरवाजा नहीं जानते थे, दरवाजा क्या है मार्ग जरूर जानते थे।
तो दरवाजा देखो प्रभु यीशु मसीह है, ये देखो कितनी बड़ी बात है। इसी ये बात जो बोली है ना, ये बात जो बोली है ना, अभी एक ही चीज देखी हमने सिर्फ मार्ग, अभी सत्य भी देखना है और जीवन भी देखना है। और तीनों पे एक ही तरह का कपड़ा मिलेगा, एक ही रंग का कपड़ा मिलेगा। गेट पे, बाहरी गेट पे भी, आगे भी जाएंगे तो तीन जगह है ये चीज। और इसीलिए ये तीन बोला है, पहले मार्ग, उसके बाद मिलता है सत्य, उसके बाद मिलता है जीवन। यही है बुलाए हुए, चुने हुए और वफादार। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा। चलो अब हमने देख लिया गेट, देख लिया अब गेट से अंदर दाखिल होते हैं। ठीक है, बाहरी स्टोरी देख ली कि वो जो 7.5 फुट का मतलब है, एक संसारिक इंसान, शारीरिक इंसान परमेश्वर की बातें नहीं समझ सकता, परमेश्वर की स्वर्गीय चीजों का ज्ञान नहीं रख सकता, परमेश्वर के बारे में नहीं जानता। और वाइट कपड़े का मतलब है धार्मिकता और पवित्रता, जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमें मिल जाती है। उसके बाद जो दरवाजा है उस पे, दरवाजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके चार पिल्लर हैं, चार सुसमाचार और पांचवी पौलुस की गवाही, जो चार कॉर्नर बना रही है, जो चार खाने बना रही है। और जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ है उसमें, जो कलर इस्तेमाल हुआ है, रंग इस्तेमाल हुआ है, वो रंग जो हैं उनका एक एक का क्या मतलब है। खून यानी प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, ब्लू नीला यानी परमेश्वर की वफादारी, और किरमची राजाओं का रंग। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने वफादारी दिखाई, प्रभु यीशु मसीह है प्रभुओं का प्रभु और राजा का राजा। ठीक है, चलो गेट के एंटर होते सार ही अभी क्या है पढ़ते हैं, निर्गमन 40:29। पहली चीज जो मिलती है, अब आंगन में चले जाएंगे हम, उसमें क्या है, जैसे आपके गेट से एंटर हुए तो पहली चीज हमें क्या मिलती है, आपकी गाड़ी खड़ी है। ऐसे ही तंबू के गेट से एंटर होते ही क्या थी सबसे पहली, 40:29 जी,
और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया।
तो सबसे पहले जो मिलती है बहुत बड़ी वेदी, इसको बोलते हैं ब्रेजन ऑल्टर। ब्रेजन ऑल्टर का मतलब क्या है, एक तांबे की वेदी। ये बहुत बड़ी वेदी है एक्चुअली, इसकी डिटेल आप 27वें चैप्टर में देख सकते हो, बाद में देख लेना। हाँ, इसी के 27वें। ये वेदी पता कितनी है, ये स्क्वायर है, वर्ग, 7.5 फुट चौड़ी, 7.5 फुट लंबी, ऐसे बहुत बड़ी वेदी है, और 4.5 फुट ऊंची। तो 7.5 फुट ऐसे, 7.5 फुट ऐसे, 7.5 फुट ऐसे, 7.5 फुट ऐसे, और 4.5 फुट कितना, इतना लगा लो है ना, इतनी बड़ी है वेदी गेट में एंटर करते ही। ये बहुत बड़ी वेदी है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही कोई दरवाजे से एंटर होता है उसको सबसे पहले देखने को क्या मिलती है, वेदी। वेदी पे क्या चढ़ाया जाता है, बलिदान, बलिदान। ठीक है, तो जब हमें प्रभु यीशु मसीह की जान पहचान करवाई जाती है, हमें पता चलता है क्या, कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा बलिदान किया, सलीब पे क्या की। तो वो वेदी का मतलब है बलिदान। किसका बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। ठीक है, सबसे बड़ी कुर्बानी आज तक मानेंगे, आज तक ऐसी कोई कुर्बानी नहीं हुई है ना। तो इसीलिए जब हम अगली क्लास में भी देखेंगे ना प्राश्चित के दिन की कुर्बानियां, तो सबसे बाहर वाली वेदी पे जो बलिदान होता था वो होता था बछड़े का, एक बल्द का, एक बछड़े का। तो और क्लियर हो जाएगा इस बलिदान के बारे में कि ये कितना बड़ा बलिदान था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन छुड़ौती के तौर पे, बराबर कीमत के तौर पे क्या कर दिया, दे दिया। तो जब एक विश्वासी, जब विश्वासी की स्थिति में है, सबसे पहले उसका ध्यान जाता है क्रॉस पे, वाह क्या बलिदान था प्रभु यीशु मसीह। तो ये है वो पहली चीज जिस पे ध्यान जाता है। उसके बाद वेदी से आगे निकलो तो मिलता है एक बर्तन जिस जो हाथ पैर धोने के काम आता था। वो पढ़ो जरा निर्गमन 30:17 और से लेके 21 तक। तो एक चीज हो गई तंबू के अंदर, वेदी हो गई, अभी आगे चल रहे हैं हम।
यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होड़ी और उसका पाया भी पीतल का बनाना।
तो पीतल का है ये, आंगन में एक पीतल की होड़ी है, ठीक है, और ऐसी, ठीक है, जिसमें पानी रखा जाता था। पानी किस कारण रखा जाता था, ये पढ़ लो। हाँ पढ़ो पढ़ो।
उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना।
हाँ।
और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोए करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब वे हाथ पांव तले जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे।
अगर धो के एंटर नहीं होंगे
तो मर जाएंगे।
तो ये बात देख लो, फिर से पढ़ लो 30 से लेके 32 तक।
40 का,
हाँ
ये कितना बता रहा है, 30 का,
30 का 17 से 21
21 तक है। 40 का,
40 का 30 से लेके 32 तक।
अच्छा। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में बीच होदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला और मूसा हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ धो पांव धोते थे जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी।
तो देखो जब भी अगर तंबू के अंदर आना है, ठीक है, तो क्या करने हैं, अगर नहीं धोए तो क्या हो जाओगे,
मर जाओगे,
ठीक है। तो इस सारे का क्या मतलब है, इस सारे का क्या महत्व है। जैसे हम देखते हैं कि वो जो बहुत बड़ी वेदी थी वो था हमारे प्रभु यीशु मसीह का सलीब वाला बलिदान, बहुत बड़ा बलिदान। ऐसे ही ये जो क्या बोलते हैं हौदी है, जो पीतल की, जो ये जो बर्तन है हाथ पैर धोने के लिए, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के बारे में शुरुआती समझदारी। बाइबल जो दे रही है ना शुरुआती समझदारी, जैसे 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 उदाहरण के तौर पे, जैसे जैसे हम नए नए मसीह में आते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं हमारे काम देखते हैं, हमारे जीवन का चाल चलन, तो बोलते इसमें क्या धोना है, हाथ और पांव। हाथ का मतलब है काम और पांव का मतलब है चाल चलन। मसीह पे विश्वास के जरिए से सबसे पहले हमारा ध्यान हमारे कामों पे और हमारे चाल चलन पे आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बुरी बुरी आदतें या गालियां देना, गंदी गंदी भाषा इस्तेमाल करना, दारू पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, जुआ खेलना, संसारिक मूवियां देखनी या पार्टी देखनी, पार्टियां देखनी, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, नहीं, हमें मसीही होने के नाते नहीं। तो ये पार्टी, मूवी देखना, जुए के अड्डे जाना, ये है चाल चलन। और काम, इनको क्या करना है, साफ करना है, मतलब ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के ज्ञान की समझ में नहीं आ सकते,
नहीं आ सकते।
तो साफ करना है इनको। एफिसियों 5:26 पढ़ लो, और उसमें जो जो पानी है, पानी का मतलब क्या है पढ़ लो। एफिसियों 5:26
आपसे पूछूं
कि उसका वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए।
तो परमेश्वर का वचन है वो पवित्र जल जिसके जरिए से हम हाथ और पांव धोते हैं। यही तो यूहन्ना 17:17 भी बोलता है ना, उनको अपने वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन
सत्य है।
तो हमारे काम और हमारा चाल चलन बदलना शुरू हो जाता है किससे? वचन से। सफाई होनी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं आंगन में। आंगन का मतलब पता है,
यहाँ पर जहाँ पर भी वचन को जल बोला गया है ना, और जल को हम संसार भी बोलते हैं।
नहीं,
जल ही बोला गया,
ये वो है जो जो वचन है वो है जीवन का जल।
एक जगह बोला ना बाइबल में, जब तू अपनी रोटी को पानी पर रखते जो आप बताए वो भी संसार बोला गया है ना।
यस यस यस, वो हाँ। तो ऐसे ये देखना पड़ता है क्या है क्या
हो गया, मतलब सिचुएशन के अनुसार जगह जगह परमेश्वर उसका अर्थ करता है।
हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद हम देखते हैं तीसरी चीज, जो दो चीजें देख ली अंदर तंबू के जो चले गए हम, एक तो वेदी और दूसरा ये हाथ पांव धोने वाला बर्तन। तो ये हाथ पांव धोने वाले बर्तन का मतलब है परमेश्वर की बाइबल, वचन यानी बाइबल, और जिसके जरिए से हमारे जीवन और चाल चलन में, काम और चाल चलन में फर्क पड़ना चाहिए। उसके बाद जो ये जो आंगन है, क्योंकि ये तंबू जो है ना, तंबू अभी शुरू ही हुआ है, इसके अंदर एक और तंबू है, एक और मतलब वो जो तंबू बना हुआ है।
जिसमें सिर्फ एक ही जाके एक बार ही
आते
हैं, वो भी झुके नीचे,
वो जगह भी जाना है, पवित्र और अति पवित्र दो हैं उसके भी हिस्से। तो ऐसे तो अभी हम कहाँ हैं? आंगन में। तो आंगन का मतलब पता क्या है? आंगन का मतलब है खाली विश्वासी यानी बुलाए हुए। आंगन जो है, जैसे अभी आपके, आपने न्योता दिया सारे एरिया को, आपके आंगन में खड़े हैं,
लेकिन रूम में बैठ जाते हैं लोग, बुलाया किसी ने,
तो ऐसे
के लिए अभी अंदर जाना है।
हाँ, तो ऐसे ही है, जैसे तंबू भी ऐसे ही है, आंगन है, आंगन के अंदर दो आइटम्स हैं, उसके बाद एक दरवाजा है, दरवाजे के अंदर से जैसे ये दरवाजा है, अंदर आए तो ये एरिया है पवित्र स्थान, फिर एक पूरा दरवाजा नहीं, फिर ऐसे पर्दा है पूरा, उसके उस तरफ है अति पवित्र स्थान, उसमें याचक जा सकता है, सिर्फ याचक, मुख्य याचक, याचक भी नहीं मुख्य याचक, वो भी
है।
तो ये तंबू यानी है पहली स्थिति यानी बुलाए हुए। चर्च वाली क्लास में चले जाते हैं अब हम, यानी सारे क्रिश्चियन ये जितने भी हैं सब क्या है? आंगन में है। ये प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास दिखाते हैं, लेकिन आगे जाना है अंदर तो एक खास कदम उठाना पड़ेगा, वो क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन आंगन का मतलब बता रहा हूँ। ये जो आंगन है ना, आंगन, अगर अगर ईसाइयों, कुछ ईसाई अच्छे भी हैं, सब बुरे नहीं हैं, कुछ ईसाई अच्छे भी हैं, तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने हाथ पांव धोने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये खाली विश्वासी है, अंदर जाना है तो एक चीज होनी जरूरी है, और वो है सच्चाई। बिना सच्चाई के आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, और सॉरी, बिना सच्चाई के नहीं, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या वो क्या चीज है। तो हम ये जो जितने ईसाई हैं, ये है आंगन में, ये है विश्वासी, ये है बुलाए हुए, अभी इनमें से चुने जाने हैं। चुने कैसे जाने हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो चुने जाने के लिए क्या है? पढ़ लो मत्ती 16:24। उससे पहले एक गिनती 3:5-10 तक देख लो, गिनती 3:5-10 जो बताता है विश्वासियों की जो पहली स्थिति है ईसाइयों की।
3:5,
गिनती 3:5-10 तक, मत्ती 16:24।
हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम ये ही है, नदाब और अबीहू, जिस समय सीने के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे और वे पुत्री भी थे। एलियाजर और इतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर।
तो ये जो लेवी है ना, लेवी लेवी है पहली स्थिति,
विश्वासी
लेवियों में से चुने जाते हैं याचक बनने के लिए। जैसे लेवी खड़े थे, उनमें से चुने जाने हैं किसके लिए? याचकाई। याचकाई का क्या मतलब है? तंबू के अंदर सेवा करनी है। याचकाई का क्या मतलब है? तंबू के अंदर जाके साफ सफाई का काम, वो ये सारे काम करने हैं जो अंदर का काम है। हाँ पढ़ लो, यही बात पढ़ लो।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर।
तो लेवी का मतलब पता क्या है? लेवी का मतलब है बुलाए हुए ईसाई, यानी ईसाई।
हाँ। सच्चे ईसाई हो मान लो, है
ना? नहीं,
अच्छा बुलाए हुए वाले,
खाली ईसाई।
हाँ। जो तीन से शुरू है,
तीन की पांच से लेकर दस तक। हाँ।
और वे उसकी सेवा टहल करें, जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उनकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इजरायलियों की सौंपी वस्तुओं को भी रक्षा करें। इस प्रकार के तंबू की सेवा करें। और लेवी और तू लेवियों की हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे। और वे इजरायलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हो।
देखो, तो लेवी जो लेवी गोत्र होता था, उनका क्या काम होता था? काम करने का, सेवा। और जो उसको हारून को सौंप दे, वो याचकाई के लिए। तो यही है, ये लेवी कौन है? लेवी है जो ईसाई संसार में से बुलाए हुए, लेकिन इनमें से चुने जाने हैं किसके लिए? याचिकाई के लिए। याचिकाई का मतलब क्या है? याचिकाई का मतलब है दूसरी स्थिति, यानी चुने हुए। और ये चुने हुए स्थिति कब होती है? जब एक ईसाई ये फैसला करता है कि मैं अपने आप का इनकार करके पिता की इच्छा को पूरा करूंगा। तो यही बात हुई। लेवी जो ये फैसला करते हैं कि आज से मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियों में मेरा कुछ नहीं, मैं तंबू में ही सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। तो इसे क्या बोल सकते हैं सीधे शब्दों में? जो परमेश्वर के साथ पूरी वाचा बांधते हैं, वो जाते हैं दूसरी स्थिति में। वो जाते हैं कहाँ? चुने हुए की स्थिति में। और जब चुने हुए की स्थिति में जाते हैं, उनको अनुमति मिलती है अंदर जाने की। कहाँ? तंबू के अंदर जाने की। लेवी को अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन याचक अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? तो यही है कि जो वाचा बांधते हैं, जो बोलते हैं कि आज से मेरी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, जो ये फैसला करते हैं, उनको मिलती है सच्चाई। वो जाते हैं अंदर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी चीज क्या बोली? मार्ग, और उसके बाद सत्य, फिर मिलता है क्या? सत्य। सेकंड स्टेज जो है वो है सत्य, दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति क्या है? चुने हुए की स्थिति। जब आप परमेश्वर के कृपा से चुने जाते हैं, परमेश्वर आपको देता है सच्चाई। जैसे जलंधर में आज आपको चुना, आपको क्या दे रहा है परमेश्वर? सच्चाई, प्योर वचन। ठीक है, हर एक के लिए नहीं है ये, सिर्फ याचकों के लिए है। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, तो पढ़ो आगे। वो जो तीसरी जगह है अंदर, हाँ मत्ती पढ़ लो पहले। मत्ती का मैंने बता दिया कि जो पूरी वाचा, फुल कॉन्सेक्रेशन, जो पूरी वाचा बांधते हैं।
अभी क्या पढ़ना?
उसके बाद अभी हम जाएंगे, तीन चीजें देख ली हैं हमने। देख लिया गेट, हमने देख लिया वेदी, हमने देख लिया हॉबी, हमने देख लिया आंगन। अब जाना है अगली चीज। अगली चीज क्या है? पवित्र स्थान, तंबू के अंदर जो है, जो पवित्र स्थान। जो पहले वेदी थी, अब बर्तन था धोने वाला, अब धो के जिसके अंदर जाते हैं उसको बोलते हैं पवित्र स्थान। ये पढ़ लो निर्गमन 26 का 36।
निर्गमन
36 का 36। हाँ
फिर तंबू के द्वार के लिए नीले और बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सीने वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना।
देखो सेम ना, नीला किरमची और बैंगनी, सेम कपड़ा सेम द्वार। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सबसे पहले ये बात कि लेवी जो है यानी एक विश्वासी या एक आम ईसाई जो आप यहाँ पे देख रहे हो सारे संसार में, इनको अनुमति नहीं है पवित्र स्थान में एंटर होने के लिए। सिर्फ याचक एंटर होंगे। अगर वो एंटर होने की कोशिश की तो क्या हो जाएंगे?
मर जाएंगे।
मर जाएंगे, ठीक है। सिर्फ याचक ही इस दूसरे दरवाजे के जरिए से कहाँ एंटर हो सकते हैं? पवित्र स्थान में, जिसको पवित्र स्थान बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आंगन से पवित्र स्थान में जाना है तो एक विश्वासी को, एक बुलाए हुए को प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने वाला बनना है, चुने हुओं की स्थिति में जाना है, एक वाचा बांधनी है, कुर्बानी वाली वाचा बांधनी है। अगर वाचा नहीं बांधते हैं तो दूसरी स्थिति पर नहीं पहुंच सकते। ये बात साफ साफ है। इसीलिए एक उदाहरण लूंगा मैं, जैसे वो अंकल की क्लास ली, उसकी 53 पूरी हो गई और वो आगे हमें बोल रहे हैं कि हमें मिलेनियम पिक्चर्स सिखाओ। अभी मैं मिलने गया था पिछले हफ्ते, बोलते हैं हमारे लिए कब स्टार्ट कर रहे हो वो फर्दर स्टडीज जो आगे एडवांस स्टडीज है। तो मैंने ब्रदर से डिस्कशन किया, मैंने बोला क्या करना है, तो बोले उन्होंने वाचा बांधने का क्या फैसला लिया है। मैंने बोला वो कुछ नहीं बोला है, ठीक है, क्योंकि वाचा की बात किसी के, मुझे नहीं आपको बतानी है, आपके मन से आनी चाहिए कि मैं वाचा बांधना चाहता हूँ। तो वाचा की बात नहीं आई बताई है। तो ब्रदर बोले फिर उनको बोल दीजिए कि आंगन वालों के लिए और पवित्र स्थान वालों के लिए जो भोजन है वो अलग अलग है। आपको इंट्रोडक्शन दी है, आपको बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, बड़े बड़े सत्य बताए हैं। अब जब तक आप फैसला नहीं लेते वाचा बांधने का, हम आपको एडवांस स्टडीज नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे ही है कि एक फर्क है, क्योंकि जब हम दूसरी स्टेज में पहुंचते हैं, चुने हुओं की स्थिति में पहुंचते हैं, परमेश्वर हमें और गहरी गहरी बातें, और बड़ी बड़ी बातें, और गहरे गहरे सत्य बताता है। और वो गहरे गहरे सत्य याचकों के लिए है, लेवियों के लिए नहीं है। लेवियों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए कि उन सत्यों की वजह से। क्योंकि अगर आप पवित्र स्थान में जाते हैं तो वहां पे मिलता है आपको टेबल, उस टेबल पे क्या है? मन्ना। वो हर हफ्ते क्या होता है? बदला जाता है। मन्ने का मतलब समझते हैं आप क्या है? परमेश्वर का वचन आपको मिलती है, परमेश्वर के वचन की गहरी गहरी बातें, ठीक है, जब आप पवित्र स्थान में पहुंच जाते हो। तो ये और बड़ी बड़ी बातें हैं। तो जो, तो जब तक हम कुर्बानी वाली वाचा नहीं बांधते, जब तक हम फैसला नहीं लेते एक विश्वासी होने के नाते कि मैं प्रभु यीशु मसीह का पीछा करूंगा, जब तक हम वो चिन्ह नहीं पूरा करते। वो चिन्ह क्या है? पहले तो पढ़ लो भजन संहिता 50:5 और उसके बाद 25:14। भजन संहिता 50:5 और 25:14। और 25:14।
मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है।
तो ये भक्त वो हैं जो बलिदान चढ़ा के वाचा बांधते हैं। और 25:14 भी पढ़ लो।
यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा।
सो सिर्फ उन पे ही परमेश्वर अपनी क्या करता है? वाचा प्रकट। तो जब ये जो रहस्य पूर्वक वाचा, ये कुर्बानी वाली वाचा, इसका चिन्ह नहीं जब तक पूरा होता तब तक हमारी स्थिति नहीं बदलती है। ये चिन्ह है बपतिस्मा। जब तक हमारा असली बपतिस्मा नहीं होता है, सच्चा बपतिस्मा नहीं होता है, तब तक हम एंटर नहीं करते हैं दूसरी स्थिति में। ठीक है, तो यही है फर्क एक आंगन में रहने वाले का और एक याचक का जो तंबू के अंदर सेवा करता है जाके। ठीक है, तो ये बात है। तो ये है पवित्र स्थान। अभी पवित्र स्थान में क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, लेवी 24 का 5 और 6 देख लो। लेवी व्यवस्था 24 का 5 और 6।
तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एक बार के 2/10 अंश मैदा हो, तब उनकी 2-2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6-6 रोटियां स्वच्छ मेज पर योगा के सामने धरना।
तो ये है मन्ना वाला टेबल। ये आपको पहले भी बताया 12 रोटियां होती हैं उसमें। ठीक है, तो 12 रोटियों का मतलब है
5 से 6।
12 रोटियों का मतलब क्या था?
12 रोटियों का मतलब 666 वही बना था ना,
66
66
किताब यानी बाइबल, परमेश्वर का वचन। ठीक है, फिर परमेश्वर अपने वचन में से अच्छी अच्छी चीजें, गहरी गहरी चीजें आपको देता है पवित्र स्थान में, बाहर नहीं। लेवी को नहीं मिलती है वो, कब मिलती है? जब आप याचक बन के तंबू के अंदर जाते हो। अभी एक बात मैं आपको छोड़ गया, ये तंबू की जो लंबाई चौड़ाई है, जो पवित्र स्थान है ना, वो पवित्र स्थान उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 15x30 का है, 15x30 फुट। ठीक है, 15x30 फुट की है ये पवित्र स्थान की जगह, जिसमें सबसे पहली चीज है मन्ना वाला टेबल। मन्ने वाले टेबल का मतलब क्या है, और ये किसका बना है? सोने का। अब अंदर जो बना है, बाहर पीतल का है ना, अंदर सब सोने का है। सोने का शमादान, सोने की वेदी और सोने का ही टेबल। टेबल तो ऐसे बना होगा लेकिन उस पर ऐसे सोना चढ़ाया होगा।
वो एम लिखा हुआ है, वो क्या ऋषि के बगल में लिखा ना ऊपर एम?
हाँ बताऊंगा, तो सब बताऊंगा।
नीचे से वाले एंटर तो नहीं है?
नहीं, ऐसे नहीं। तो ये हर सबत पे पढ़ लो 8 और 9, 24 का 8 और 9 में हर सबत पे बदलना होता है इसको। मानना
प्रति 7 विश्राम प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य योगा के समुक्रम से रखा करे, यह सदा की बाचा की रीति इसराइलियों की ओर से हुआ करे, और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी।
हाँ।
और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वह यहोवा के हाथ में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी।
तो देखो, ये याचकों के लिए है, आम इंसान के लिए नहीं है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर अपने वचन की गहरी गहरी बातें, आत्मिक बातें सिर्फ उनको बताता है जो वाचा बांध के पवित्र स्थान में दाखिल होते हैं। आम ईसाई को ये बातें प्रकट नहीं करता है परमेश्वर। ठीक है, और ये मन्ना भोजन का मतलब है आत्मिक रोटी, और इसका मतलब है किताबें, बाइबल की 66 किताबें। ठीक है, 66 किताब। उसके बाद दूसरी चीज जो है पवित्र स्थान में, वो है 7 दीवटों वाला क्षमादान। ये पढ़ लो, निर्गमन 37:17-24 तक। निर्गमन 37:17-24।
फिर उसने चोखा सोना गढ़ के पाए और डंडी समेत दीवट को बनाया, उसके पुष्प कोष काट और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और दीवट से निकली हुई 6 डालियां बनी, 3 डालियां उसकी ओर से और 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकाली।
तो इसका मतलब आपको दूसरी चीज पता चल गई, सोने का है क्षमादान, 7 है उसमें। ठीक है, तो इस क्षमादान का मतलब गहराई में जब हम पढ़ेंगे, 7 कलीसियाएं जो अलग अलग समय में अलग अलग कलीसिया हुई है, वो गहराई में जब प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं जब हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि पवित्र स्थान जो है ना, ये देखो ये तंबू है, तंबू में अब पवित्र स्थान में लाइट के लिए कुछ नहीं है, पवित्र स्थान में लाइट के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है एक जरिया है क्षमादान, जिसके जरिए पवित्र स्थान में ज्योति होती है, लाइट होती है, रोशनी होती है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि सूर्य तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कवर किया हुआ है ना, ऊपर से भी कवर है, साइड से भी कवर है, तो अंदर तो
पवित्र स्थान में उजाला आ रहा है, वो भी सीना वो ऊपर।
हाँ हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये जो अपना ये दीवट, ये क्षमादान, और इसको जो इसके ध्यान रखता है, तेल वेल डालने का काम पता किसका है, मुख्य याचक का है। तो ये इसी में ही इसमें है कि जो मुख्य याचक है वो उसको ट्रिम करता है, पूरा ध्यान रखता है दीवटों का। तो ये का मुख्य याचक है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के अलग अलग जो 7 बंटवारे इसने किए, बंटवारे नहीं बोल सकते, 7 भाग, ठीक है। पहली थी जो जैसे 7वीं का नाम है लाउडेसिया, 6ठी का नाम है फिलाडेल्फिया, ऐसे जो कलीसियाएं हैं, 7 कलीसियाएं हैं उनका जो अभी चल रही है अंतिम कलीसिया लाउडेसिया, इनको तेल देने का काम। तेल का मतलब क्या है, पवित्र आत्मा। तेल से क्या निकलती है, रोशनी। रोशनी का मतलब क्या है, सच्चाई। तो इनको सच्चाई देने का काम, आत्मा देने का काम कौन कर रहा है, मुख्य याचक, वो है प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। और ये बात, ये लाइट जो है ये चुने हुओं के लिए है, पढ़ लो ये बात, 1 पत्रस 2:9। जी
पर तुम एक चुना हुआ वंश,
चुना हुआ वंश
और राज पदधारी,
राज
का समाज,
याचकों का समाज,
और पवित्र लोग और परमेश्वर की नित्य प्रजा।
हाँ,
इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी
ज्योति, अद्भुत ज्योति, अद्भुत ज्योति मिलती है जब हम पवित्र स्थान में जाते हैं। वह प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बोली साफ साफ, यूहन्ना 16:13 पढ़ो जरा, यूहन्ना 16:13। ये कोई आम खास बात नहीं है, ये कोई घटना नहीं है, ये तो
13।
हाँ,
परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा।
तो ये देखो, सब सत्य प्रकट करेगा। तो ये सचमुच ये जो ज्योति है, जो गहरी गहरी बातें, जो भविष्यवाणियों की समझ, जो परमेश्वर की योजना की समझ, जो थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ है, ये वचन जो चिनात्मक वचन है, नमूना में दृष्टांतिक है, ये सब हमें कब समझ आता है, जब हम उस अगमय अद्भुत ज्योति में पहुंचते हैं, जब हम इन दीवटों की रोशनी को देखते हैं। जो लेवी है वो कभी ये देख पाएगा कि पवित्र स्थान में कोई ऐसा क्षमादान भी है जिससे ऐसी ज्योति निकलती है? अभी आप देखो जरा, वो जगह जो थी है ना, मैं बोला 15x30 फुट की है, 15x30 फुट में इतना छोटा सा क्षमादान कितनी रोशनी करेगा? लेकिन परमेश्वर का चमत्कार देखो कि वहां पे बहुत रोशनी होती होगी जितनी चाहिए। तो ये अगमय ज्योति, अद्भुत ज्योति लेवी देख पाएगा कभी? क्योंकि उसको तो अनुमति नहीं है एंटर होने की। अगर एंटर हो गया तो क्या होगा, मर जाएगा, देख नहीं पाएगा वो। तो इसी तरीके से परमेश्वर के वचन के गहरे गहरे सत्य जो परमेश्वर ने खाली चुनी हुई प्रजा याचकों के लिए रखे हैं, वो हर किसी को नहीं देगा, हर किसी को नहीं देगा। ये परमेश्वर की ही योजना नहीं है। एक फर्क तो होना चाहिए ना ब्रदर, एक क्लास का दूसरी क्लास का फर्क तो होना चाहिए ना, इनको क्या देना है इनको क्या नहीं देना है, फर्क क्या रहा अगर नहीं तो। प्रभु यीशु मसीह ने ये दिखाया है, जो 3 थे चेले वो बड़े प्रेम, उनसे बहुत प्रेम था, वो हमेशा साथ रहते थे, लेकिन सारे के सारे हमेशा साथ नहीं रहते थे, ठीक है। तो इसीलिए याचक है जो इसका ध्यान रखता है, और वो याचक कौन है ये पढ़ लो। मुख्य याचक जो देवताओं को तेल देने का काम, उनको उकरने का काम कौन करता है, प्रकाशित वाक्य 1:13 पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 1:13
और उन दीप्तों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था।
तो ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो ये कलीसिया अपने सातों की सातों भागों को, कलीसिया को कौन चलाता है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, अभी ये जो दीवट बने हैं ये बड़ा ही कारीगरी का काम है, बड़ा ही बीट क्या बोलते हैं उसको, अच्छे तरीके से घूट घूट के तराशा हुआ है। जब तराशा जाता है तो दुख भी होता है, कटता है, बहुत कुछ कटता है। तो इसका मतलब है कि जो ये कारीगरी, ये जो अच्छा काम है डिज़ाइन का, और दीवटों का जो वो है ना, ऐसे एक दिया फल, फल आकार जो है, एक फूल है, फूलों के साथ ऐसे चल रहा है और ऊपर जाके एक ऐसा दिए समान जिसमें फल आता है। ठीक है, ऐसे तो इसका मतलब है कलीसिया का जो कैरेक्टर बन रहा है, तैयार हो रहा है, वो बड़े कष्ट से हो रहा है। कैसे हो रहा है? बड़े कष्ट से होगा, लेकिन जिस दिन तैयार होगा बड़ा सुंदर लगेगा। क्या कारीगरी है यार इसमें, पढ़ लो ये बात। प्रेरितों के काम 14:22 आपने देखा होगा, सोना जब लेने जाओ नॉर्मल सोना का रेट कम होता है, लेकिन जब आप डिजाइन मांगो ना तो वो डिजाइन का अलग से मांग दे, क्योंकि मेहनत ज्यादा लगती है उस पे। जी हेलो।
और खेलों के मन को शिक्षक करते रहे और ये उसके धीरे धीरे की विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा।
तो आज कौन बताता है ये बात? प्रेरित तो ये बोलते थे, दिलासा देते थे, हौसला देते थे, टेंशन मत लो, हमें बहुत बड़ा कलेश उठा के एंटर होना है परमेश्वर के राज्य में। लेकिन आज ऐसा कौन बोलता है? कौन बोलता है आज ऐसा? आज क्या बोला जाता है? प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद जब आपके आप पे कलेश हो या आप कष्ट में हो तो क्या बोलते हैं पता? आपका विश्वास नहीं है, आपका विश्वास कमजोर है, आप में कोई जरूर कमी है, इसलिए आपको आशीष नहीं आ रही है, इसलिए आपकी गरीबी नहीं टूट रही है। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते थे। वो क्या बोलते थे? बहुत कलेश झेल के एंटर होना है, ये कोई केक वॉक नहीं है, आसानी से चलो जी स्वर्ग में एंटर हो गए। ये बहुत बड़ा बुलावा है, बहुत बड़ा बुलावा है, ऐसी वैसी बात नहीं है, ये हर किसी के लिए ये नहीं है बुलावा। ठीक है, तो ये है दूसरी वस्तु पवित्र स्थान में। ठीक है, अब तीसरी वस्तु भी है वहां पे, कोई वो क्या है? वो एक छोटी वेदी है, वो पढ़ लो। निर्गमन 40:26-27 नहीं 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 वो तो बाहर है, आंगन में देखो, बाहर देखो,
ऊपर की बात करो, तो बीच में पवित्र स्थान वाले की बात
नहीं, पवित्र वो वेदी है,
सेंटर में है ना वेदी, तो ऊपर सामने।
हाँ वो जो पवित्र स्थान के बिल्कुल, अति पवित्र स्थान के बिल्कुल पर्दे के नजदीक है वो वेदी।
और ये दोनों लेफ्ट साइड में,
ये इधर जो टेबल है जो पढ़ लिया हमने, यहाँ पे मन्ना और इधर है दीवटों, सात दीवटों, और तीसरी चीज है जो वो है वेदी। पढ़ो
40:26-27
और
उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी रखा।
हाँ, तो
उसने ऊपर सुगंधित धूप जलाया,
धूप जलाया जैसे
यवन मूसा को आगे दी।
तो ये एक और छोटी वेदी है, बाहर बहुत बड़ी वेदी थी, लेकिन ये छोटी वेदी है, और इस छोटी वेदी पे धूप जलाई जाती है, और जब धूप जलाई जाती है तो क्या होता है? धुआं होता है। ठीक है, धुआं होता है और सुगंध फैलती है, सही ना? तो इस वेदी पे क्या है, अभी कोयले हैं, और कोयले पे क्या किया जाता है आपको पता है, गूगल एक चीज नाम गूगल नाम की चीज होती है, धुआं होता है और कीड़े मकोड़े भागते हैं,
कैटलिक वगैरह नहीं होता, वो डाल के उसको ऐसे से हिलाते हैं और धुआं करते हैं,
तो उससे क्या होता है, कोयले हैं, कोयले पे जब आप धूप डालते हो तो वो दो चीजें पैदा करती है, एक तो धुआं, एक तो सुगंध, ठीक है, दो चीजें आती है। इसका मतलब क्या है, ये है तीसरी चीज पवित्र स्थान में। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक वाचा बांधा हुआ संत, जिसको परमेश्वर बोलता है ना, मेरे संतों को, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, तो परमेश्वर जब हम वाचा बांध लेते हैं, जब हम फैसला कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे चलना है, तो फिर हमें रोज बलिदान चढ़ाना है, हर रोज का बलिदान हमारा जाना चाहिए। जैसे याचक क्या करता था, पता क्या करता था, हाथ भर के ऐसे जितनी कैपेसिटी है, जितना उसमें योग्यता है, जितना मेरे हाथ में आ सकता है, ऐसे लेके जाके वेदी पे ऐसे डालता था, जिससे धुआं होता था और सुगंध फैलती थी। धुआं क्या करता था, जब धुआं पूरा पवित्र स्थान को भर देता था, फिर वो नीचे से जब जहां से रेंग के जाता था ना याचक, वो धुआं उस जगह से निकलते हुए अति पवित्र में जाता था, और वो जो अति पवित्र में चीज है ना, उसको ढक लेता था। तो इसका क्या मतलब है, सारा मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि हमें हाथ, जब हम वाचा बांध देते हैं, जब हम याचक बन जाते हैं, जब हम चुने हुए बन जाते हैं, हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा रोज का बलिदान हम वेदी पे लेके जाएं, और वेदी पे लेके जाना है तो कहाँ डालना है, कोयले पे डालना है। जब कोयले पे डालेंगे तो सुगंध भी फैलेगी और धुआं भी उठेगा, और धुआं कहाँ जाएगा, अति पवित्र स्थान में जाएगा। अति पवित्र स्थान का मतलब पता क्या है, परमेश्वर की मौजूदगी। यानी इसका मतलब अब मैं गहरे तरीके से बताऊंगा, इसका मतलब कोयले हैं, कोयले का मतलब क्या है, कोयले हैं ये संसार में मिलने वाले भयानक भयानक तजुर्बे, जो हमें संसार से मिलेंगे, जो हमें नामी ईसाइयों से मिलेंगे, ऐसे ये है कोयले। और इनके बीच में रहते हुए आपकी योग्यता के अनुसार आपको रोज बलिदान चढ़ाना है। अभी ये रोज बलिदान का क्या मतलब है, एक तो सुगंध आती है और एक धुआं निकलता है। सुगंध का मतलब है अच्छा कैरेक्टर, अच्छा स्वभाव। जब हम संसार में अच्छा स्वभाव दिखाते हैं, हमारा विरोध होता है, हमें चारों तरफ से कठिनाई मिलती है, परेशानियां मिलती हैं, लेकिन उनके बीच में हम अपने आप को मारते हैं, अपने पुराने स्वभाव को मारते हैं, हम सब्र से सहते हैं, हम प्रेम से बात करते हैं, ये है बलिदान, ये है हमारी योग्यता के मुताबिक हमारा हर रोज का बलिदान, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। एफिसियों 5:2 पढ़ लो,
और प्रेम में चलो, और जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करने के बलिदान कर दिया।
सुगंध का मतलब है अच्छा स्वभाव, समझ गए, अच्छा स्वभाव, और कोयले पे डालना है। कोयले पे, जब कोयले का मतलब है ये संसार, जो हमें भयानक भयानक तजुर्बे, हमारा विरोध करता है, जो जलता है, जलने का काम करता है। क्योंकि जब तक धूप को कोयले पे ना डालो, सुगंध नहीं आएगी। जलते हुए कोयले पे, अगर खाली कोयले पे डालो तो सुगंध आएगी, कब आएगी, जब जलेगा। इसी तरीके से जब हमें ऑपोजिशन, जब हमारी विरोधता होती है, तब ही हमारे स्वभाव का पता चलता है, कैरेक्टर का पता चलता है कि क्या ये सह सकता है, क्या है सचमुच ये मेरे बेटे का पीछा करने के लायक है। मेरे बेटे में ऐसे स्वभाव था, वैसा ही स्वभाव इनमें भी होना चाहिए। तो ये है पवित्र स्थान में वेदी की जगह, गहराई में और अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब हम बलिदानों के बारे में बात करेंगे, जब हम देखेंगे कि क्या क्या किस चीज़ का। दो बलिदान होते थे, एक तो बकरे का और एक तो बछड़े का, दोनों का अगली बार में हम देखेंगे कैसे कैसे तरीका क्या था वो भी। उसके बाद जो अंतिम चीज है
अति पवित्र स्थान,
वो है अति पवित्र स्थान, जिसके बारे में पढ़ते हैं कूच निर्गमन 26 का 31 से लेकर 33 तक।
निर्गमन
33 निर्गमन 26 का 26 का 31 से लेके 33 तक।
फिर नीले बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई कृष्ण तली वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा।
तो ये भी देखो, ये पर्दा भी वही रंग है, तीनों रंग सेम है, कपड़ा भी सेम है।
कढ़ाई के काम के लिए काम किए हुए करूबों के साथ।
अभी इस पे करूबी है, दो बैठे हुए ऐसे एक दूसरे की तरफ। हाँ।
और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के चार खंभों पर लटका
रहा। अभी देखो ये सोने के खंभे,
बबूल के खंभे बता,
सोने के मढ़े हुए बबूल के पेड़ के खंभे, लेकिन चारों तरफ क्या लगना है, सोना लगना है, लगे के सोने के खंभे हैं।
अंकड़ियाँ सोने की है और ये चांदी की चार कुर्सियों पर खड़ी है और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटका कर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार है बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए।
हेलो क्लास में क्या मैं
और फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर
साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर राक्षस के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर दरवाज की उत्तर की ओर मेज रखना और उसकी दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सीने वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे के लिए बबूल के पांच खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना और उनकी कड़ियां सोने की हों और उनके लिए पीतल की पांच कुर्सियां ढलवा कर बनवाना। 37 तक और आगे
नहीं, 31 से लेके 33 तक बस।
और 31 से 33 तक
हो गया। वो बोलता पवित्र और अति पवित्र स्थान को जो अलग करे, उसके बीच में एक पर्दा है, ठीक है। तो वो पर्दे पे भी क्या है, वही सेम कपड़ा है, सेम रंग है, लेकिन दो करूबी अभी कढ़ाई किए हुए हैं, ठीक है। तो इस जगह का नाम था अति पवित्र स्थान, जिसमें सिर्फ साल में एक बार जाता था कौन, याचक। अति पवित्र स्थान में एक ही बार जाता था, वो भी मुख्य याचक, दूसरे याचक नहीं, मुख्य याचक, ठीक है। वो भी कब, जब प्रायश्चित का दिन होता था। ये पर्दा बड़ा चौड़ा और भारी था, इसको याचक के बस का काम नहीं होता था कि ऐसे उठा के नीचे से रेंगना पड़ता था। यही था वो पर्दा जो ऊपर से लेके नीचे तक
दो पीस हो गया था,
फट गया था प्रभु यीशु मसीह ने जब दम तोड़ा था, ठीक है। तो इसका सारे का क्या मतलब है, इसमें भी वो तीनों ही पर्दे में तीनों ही रंग हैं, वो जो हम देख चुके हैं, वफादारी, राजाओं का रंग और बलिदान, ठीक है। और पवित्रता, हमें पता हमारा प्रभु यीशु मसीह बिना पाप के था, पापियों से अलग था, ठीक है। अभी एक बात आपको यहाँ बतानी है, तीनों जगह पे एक ही रंग का कपड़ा है, मतलब तीनों जगह ही हमें प्रभु यीशु मसीह ही लेके जाएंगे। पहले जो द्वार है बाहर वाला, वो भी प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही है, दूसरे पे भी प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही है, तीसरा भी प्रभु यीशु मसीह के
जरिए।
हाँ, तो ये देख लो, रास्ते का मतलब है बुलाए हुए, सच्चाई का मतलब है चुने हुए, जब आप चुन लिए जाते हो, जब आप पवित्र में होते हो, तो आपको मिलती है गहरी गहरी बातें, सच्चाई। और जीवन का मतलब है स्वर्गीय जीवन, ईश्वरी स्वभाव। अगर आप वफादार होते हो तो आपको मिलता है किसका, किसके जैसा स्वभाव, परमेश्वर अगर जैसा, प्रभु यीशु मसीह जैसा, तो वो भी किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए इसने बोला राह सच्चाई और जीवन मैं हूँ। वो जीवन जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, स्वर्गीय जीवन, वो मेरे जरिए ही है। सच्चाई मेरे जरिए ही मिलेगी, रास्ता परमेश्वर तक लेके जाने का मैं ही हूँ। इसलिए इसने बोला ये तीन चीजें, तीनों का मतलब है पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति। पहली विश्वासी, दूसरी पीछा करने वाले यानी पवित्र स्थान, तीसरी स्वर्ग अति पवित्र स्थान, जब हम पहला पुनर्थान पालेंगे। ठीक है, ये है वो तीन पर्दे। इसीलिए उसमें तीन पर्दे हैं और तीनों में सेम कपड़ा है, और वो तीनों की तीनों ये हैं बातें। और ये बात साफ साफ पढ़ लो मत्ती 28 का 20।
उन्हें और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।
देखो मैं जगत के अंत तक, मतलब हर जगह मैं तुम्हारे क्या हूँ, साथ हूँ। ठीक है, तो ये जो अति पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान का मतलब है शारीरिक रूप में मृत्यु। अगर जीवन प्राप्त करना है तो ये शरीर मरना है। अगर मैं, मुझे अगर वो मिलता है जीवन, तो मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये बात पढ़ लो पहला कुरंतियां 15:50-51। इसलिए मैं बोलता हूँ डियर ब्रदर कि जो बोलते हैं ना मैं स्वर्ग घूम के आया हूँ, ये हो, ये सब बकवास है। 15:50-51।
मैं ये कहता हूँ मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते।
देखो, कोई शरीर में स्वर्ग में नहीं जा सकता, हाँ,
और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है,
ना ही नाशवान, यानी नाशवान क्या है, ये शरीर है, ये अविनाश नहीं ले सकता। अविनाश मतलब जिसका नाश ना हो सके। हाँ,
देखो मैं तुमसे जीत की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे।
सोएंगे का मतलब मृत्यु में, जैसे सब सो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, हमारा पुनर्थान हो जाएगा। ये और भी बड़ी बड़ी बात है, जो जब मैं आपको पुनर्थान के बारे में जब हम बात करेंगे,
हम सब नहीं सोएंगे, मतलब जो यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे वही लोग सोएंगे, आने वाले समय में जी उठेंगे ना।
नहीं, तो जितने सब मर रहे हैं ये सो रहे हैं,
तो इसमें तो बोला ना हम सब नहीं सोएंगे।
हाँ, तो हम सब यानी कलीसिया, पूरी कलीसिया नहीं सोएगी, मतलब क्या है डियर ब्रदर, ये बड़ी गहरी बात है। गहरी बात का मतलब क्या है, पौलुस मरा कब, पहली सदी में मरा, ठीक है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, होने तक वो क्या हो रहे हैं, पत्रस पौलुस सब क्या है, सो रहे हैं। लेकिन कुछ कलीसिया के मेंबर ऐसे होंगे जो सोएंगे नहीं, मतलब क्या, जब अभी इसका भी बड़ी गहरा मतलब पहला थसलुकिया 4:16-17 में पता क्या है, पढ़ो मत, मैं गहराई में जब हम दूसरे आगमन के बारे में पढ़ेंगे बताऊंगा। उसमें भी कलीसिया के पुनर्थान के दो हिस्से हैं, एक तो क्या है, पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है
बदल जाएंगे।
इसका मतलब क्या है कि पत्रस पौलुस योहन्ना ये सब मसीह में क्या थे, मुर्दे थे। कब तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता।
जब दूसरा आगमन होगा सबसे पहले ये मुर्दे क्या हो जाएंगे?
जी उठेंगे, जी उठेंगे शरीर में नहीं,
आत्मा
में। उसके बाद एक 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 और ग्रुप बचा है, कौन है? बाकी जो हम जिंदा हैं। तो मतलब क्या, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद जो कलीसिया का मेंबर है, जो 144,000 का मेंबर है, वो सोएगा नहीं। वो क्या होगा? ऐसे मरा जैसे अभी मैं, मान लो अभी इधर मैंने आंखें बंद की और उधर मुझे वो शरीर मिल गया, ऐसे बदल जाएंगे, सोना नहीं पड़ेगा। तो ये है इसका मतलब, ये है बड़ी गहरी बात कि
अच्छा इस आप इसका अर्थ ये रहते
हैं
ना, हम सब नहीं सोएंगे ना।
यस, कलीसिया के सारे मेंबर नहीं सोएंगे। मतलब क्या है, कलीसिया के कुछ लोग मसीह में मुर्दे रहेंगे और जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा उसके बाद जो मरेंगे वो उसी वक्त बदल जाएंगे। ऐसे मरे जैसे मान लो आप रो ही रहे हो, इधर मान लो मैं मरा हूं और आप रो रहे हो, ऐसे मेरी आंखें बंद हुई और ऐसे मुझे वो शरीर मिल गया, ऐसे होगा। और लो पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 और क्लैरिटी से,
पहला
4:16-17 जी पढ़ो पढ़ो।
क्योंकि प्रभु आया नहीं, प्रभु आप ही स्वर्ग में उतरेगा, उस समय दलकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूटी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे।
सबसे पहले वो उठेंगे जो मसीह में, यानी पतरस और ये सब जो उसके प्रेरित थे।
तब हम जो जीवित हैं,
तब का मतलब होता है समय के गैप, थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद क्या होगा, जो हम जीवित हैं ये है बाकी
जीवित बचे रहेंगे।
हाँ,
उनके साथ बादलों में उठा लिए।
हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका और इसमें और गहरी बात सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद भी उसकी कलीसिया के मेंबर जीवित शरीर में होंगे, ये भी बड़ी गहरी बात है। तो ये चलो बाद की बात है, यहाँ पे वो जो अभी वचन पढ़ा उसमें ये बात तो साफ है कि मांस और लहू तो स्वर्ग में,
अच्छा परमेश्वर यहाँ आएंगे तब भी जीवित शरीर में होंगे लोग।
प्रभु इसीलिए तो बोल रहा है मेरा आगमन ऐसे होगा जैसे रात को चोर होता है, चोर आता है, लोगों को पता नहीं होगा लेकिन प्रभु यीशु मसीह आ चुके हुए होंगे, ऐसे होगा डियर ब्रदर, ऐसे नहीं होगा। इसलिए बहुत कुछ सीखना है, अभी तो शुरू हो रहा है ये। तो चलो आत्मिक बातें हैं और थोड़ी गहराई में देखेंगे, लेकिन यहाँ तो ये बात हम देख रहे हैं कि इंसान शरीर में कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। नाश, अविनाश पहनना है तो नाशवान को खत्म होना है, नाशवान अविनाश को नहीं पहन सकता, ये पौलुस साफ साफ बोल रहा है। और दूसरी बात एक और सुन लो, अब्राहम इसहाक याकूब जिनको ना मार्ग मिला ना सत्य मिला ना जीवन, वो जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं वो? तो उनके लिए योजना नहीं है, उनको शारीरिक उद्धारता मिलेगी, उनको शारीरिक पुनर्थान मिलेगा, धरती का पुनर्थान मिलेगा, स्वर्गीय पुनर्थान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात है। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि
उन्हें अवसर तो मिलेगा ना इस पृथ्वी पर, जब स्वर्ग जाएगा धार्मिकता जानने का दोबारा से, है ना?
नहीं, उनको वो संपूर्ण शरीर में उठेंगे डियर ब्रदर, ये उनका इनाम है उनकी वफादारी का उस समय का। ठीक है, वो संपूर्ण
तो धार्मिकता की शिक्षा नहीं मिलेगी?
मिलेगी, सत्य की शिक्षा मिलेगी, लेकिन वो संपूर्ण होंगे। वो जैसे जो संसार का पुनर्थान होगा वो होगा असंपूर्ण स्थिति में, पाप की ही स्थिति में। मौत से छुटकारा हो जाएगा, पाप से छुटकारा होना बाकी होगा, लेकिन ये जो उठेंगे अब्राहम इसहाक याकूब, ये संपूर्ण, इनको संपूर्ण शरीर मिलेगा।
इनको तो परमेश्वर के काम किए ना, और इसलिए वो
तो संपूर्ण शरीर जो होता है उसको समझ बड़ी जल्दी आ जाती है। जरा सोचो आप, जब अब्राहम इसहाक याकूब आएंगे और उनको देखेंगे, मिलेंगी ऐसी ऐसी चीजें, ये देखो रिकॉर्डर और ये मोबाइल, वो देखेंगे पहले ये क्या है, लेकिन उनको समझने में समय नहीं लगेगा क्योंकि वो संपूर्ण इंसान होंगे। अच्छा वो जल्दी समझ जाएंगे, अच्छा ये काम के लिए होते, बात करने के लिए ऐसे ऐसे होगा। तो ये बात है। और अभी वो जो दो चेरुबम हैं, दो करूबी हैं उस पे पर्दे पे, उसका भी मतलब है। उसका मतलब क्या है? उसका परमेश्वर के कितने स्वभाव हैं आप बताओगे?
तीन स्वभाव है
परमेश्वर के स्वभाव। परमेश्वर का कैरेक्टर
दया, ऐसे कुछ दया,
चार
संयम,
चार थे स्वभाव परमेश्वर के। एक तो प्यार, शक्ति, पावर, ज्ञान और न्याय। ये दो करूबी जो है ना उस पे पर्दे पे, दो करूबी ऐसे बैठे हुए हैं एक दूसरे की तरफ, ऐसे बैठ के करूबी ऐसे बैठे थे, वो देखो एक दूसरे की तरफ, वो पंख दिख रहे हैं ना, वो अति पवित्र स्थान में दो करूबी है उस बॉक्स पे अंदर जो है, और दो करूबी हैं बाहर पर्दे पे। तो बाहर पर्दे वाले करूबियों का मतलब है तो परमेश्वर के दो स्वभाव। और वो दो स्वभाव क्या है? एक तो प्रेम, जिसके चलते परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र, और दूसरी है पावर। ये दो स्वभाव हैं पर्दे पे, और अंदर जो दो करूबी हैं वो बाकी दो स्वभाव हैं। ठीक है, तो प्रेम कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ठीक है, और पावर मतलब रोमिया 8:31 पढ़ लो।
अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है?
तो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की पावर हमेशा संग रहती है किसके? एक सच्चे ईसाई के। अब ये ईसाई की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ईसाई तो बाहर हैं। ये जो पर्दा है ये किनके लिए है? ये है याचकों के लिए। ये वाचा बांधे, जो वाचा बांधते हैं उनका प्रेम और उनकी ताकत उनके साथ हमेशा रहती है, क्योंकि वो मदद करती है उनको परमेश्वर का वफादार रहने के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह के संग थी। इसीलिए जब उन्होंने ये काम किया, उनको कुछ भी जब बलिदान दिया तो हमेशा उनकी पहली चीज क्या होती थी कि मुझे अपने पिता के प्रति वफादार रहना है। ठीक है, तो ये है वो जो दो करूबी करूबिया से रहती, ये करूबी। ठीक है, तो अगे अब उसके अंदर क्या है? अब लास्ट चीज वो देखनी है, उसको बोलते हैं वाचा की, क्या बोलते हैं पढ़ते हैं जरा इब्रानिया 9:3-5 इब्रानिया 9:3-5
दूसरा पर्दे के पीछे एक तंबू स्थान कहलाता है। पर्दे के पीछे तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है,
परम पवित्र अति पवित्र स्थान कहलाते थे जिसको। हाँ,
उसने सोने की दूधदानी और चारों सोने से मड़ा हुआ वाचा का संदूक,
वाचा का संदूक से बोला है,
और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का वर्तमान और हारून की छड़ी जिससे फूल फल आ गए थे।
तो ये ऐसे था, एक बॉक्स था, ठीक है, सोने का, इसके अंदर मन्ना था और ये हारून की छड़ियां, ठीक है। हाँ, और
छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियां थी, उसके ऊपर दोनों पेटों में करूब थे,
करूबी थे। अभी ये दो करूबी बाहर और दो करूबी अंदर। हाँ,
जो प्राश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे।
तो इसको क्या बोलते थे? प्राश्चित का ढकना, प्राश्चित होता है यहाँ पे। हाँ,
इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है।
तो ये है चीज वाचा का संदूक, जिसमें था मन्ना, सोने का मन्ना, जिसमें थी अरुण की छड़ियां, और जिसमें थी वो वाचों वाला पट्टियों जिसपे वो 10 हुक्म लेके आया था मूसा ना, वो वाचाओं वाला वो, और इसके ऊपर थे दो करूबी बैठे हुए, ठीक है। इसको बोलते थे प्राश्चित का सिंहासन, जिसमें साल में सिर्फ एक बार ही याचक जाता था और लहू छिड़कता था, वो उसको प्राश्चित का दिन बोलते थे, प्राश्चित के दिन के बलिदान। तो सबसे पहली चीज क्या है इसमें संदूक में, एक कटोरा, जिस सोने का कटोरा जिसमें मन्ना है,
आरुण की छड़ी,
निर्गमन, निर्गमन 16 का 32 से लेके 34 तक, बत्तीस से लेके 34 तक,
उनमें डर और घबराहट समा जाएगी, तेरी बाहों के प्रताप से वे पत्थर और के समान अबोल हो जाएंगे, जब तक हे योबा तेरी प्रजा के लोग निकल ना जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाएं, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा, यह वही स्थान है हे योबा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया, यहोवा सदा सर्वदा राज करता रहेगा। यह गीत गाने का समय है,
नहीं आप 15 पढ़ रहे हो,
नहीं है
16 की,
32 से लेके 34 तक,
32 से 34 तक ना,
हाँ
16 की 32 से 34 तक। फिर मूसा ने कहा यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से अमेर भाग ओमेर भाग उस अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़, जिससे वे जाने कि यहोवा इसको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था।
तो ये कटोरा था मन्ना का उनकी याददाश्त के लिए कि कैसे परमेश्वर ने उनको उजाड़ में भोजन देता था, मन्ना देता था, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज थी हारून की छड़ी, और तीसरी जो चीज थी वो पढ़ लो व्यवस्था सार 31 का 26, दो पत्थर जिन पे व्यवस्था लिखी हुई थी,
व्यवस्था था
31 का 26,
व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे।
तो ये जो पत्रियां थी वो व्यवस्था की उनको उधर दे के साक्षी देने के लिए। अभी इस सब का क्या मतलब है, और इन सब पे आती थी, मैंने बोला ना एक सुबह बादल के समान शकीना ग्लोरी, ठीक है, इसको अंग्रेजी इब्रानी भाषा का शब्द है शकीना, शकीना लाइट। तो यही था एक स्रोता जिससे अति पवित्र स्थान में ज्योति आती थी, प्रकाश होता था, ठीक है। इस सब का क्या मतलब है, अभी आपको पता होना चाहिए, अति पवित्र स्थान का मतलब है परमेश्वर की मौजूदगी यानी स्वर्ग। अति पवित्र स्थान किसकी तस्वीर है, स्वर्ग की। अभी स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के शरीर की स्थिति क्या होगी, कलीसिया की स्थिति क्या होगी, कि उनके आत्मिक मन ही नहीं होंगे, आत्मिक शरीर भी होंगे, जैसे पिता परमेश्वर और उनके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के। अभी ये जो संदूक है इसका क्या मतलब है, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले इसको क्या बोला है, जो शकीना ग्लोरी है, शकीना ग्लोरी का मतलब है कि परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की मौजूदगी स्वर्ग से सीधी आ रही है नीचे आकाश से, ठीक है। उसके बाद प्राश्चित का सिंहासन, प्राश्चित का सिंहासन का क्या मतलब है कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, कभी परमेश्वर न्याय को नहीं झुठला सकता, इग्नोर नहीं कर सकता, न्याय तो होना ही है, न्याय तो उसको न्याय के स्वभाव को पूरा करने के लिए तो उसको जरूरत थी, जीवन के बदले जीवन, और वो अपने इकलौते पुत्र के रूप में उन्होंने दिया। उसके बाद वो जो संदूक है, संदूक, संदूक का मतलब है ज्ञान। दो करूबी थे ना, हाँ दो करूबी, एक तो था बाहर परमेश्वर के चार सब भाव है ना, एक तो क्या है
प्रेम,
प्रेम और पावर तो बाहर थे, बाकी दो रह गए कौन सा, ज्ञान और ज्ञान और न्याय। न्याय है प्राश्चित का संदूक, और वो जो संदूक है उसके अंदर है रूप मानना और वो व्यवस्था की पत्रियां और उनकी चिड़ी, इसका मतलब है ज्ञान। ठीक है, वो दो करूबी हैं ये दो, बाकी बचे सब भाव, और संदूक का मतलब है ज्ञान। और ज्ञान किसके जरिए प्रकट होता है, ये पढ़ लो पहला कुरंथियां 1:30 और नीति वचन 8:12, पहला कुरंथियां 1:30
परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा।
हाँ, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या है,
ज्ञान ठहरा।
तो प्रभु परमेश्वर का ज्ञान जो शारीरिक रूप में प्रकट हुआ ना, वो किसके, प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर का ज्ञान था। प्रभु यीशु मसीह को एक और नाम बोलते हैं ज्ञान। पढ़ लो ये बात नीति वचन 8:12 में,
क्योंकि बुद्धि मृगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में से कोई भी उसके तुल्य नहीं।
बुद्धि, तो बुद्धि है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम, परमेश्वर की बुद्धि। ठीक है, तो ये है, तो इसलिए ये प्राश्चित का जो संदूक है ये है परमेश्वर का न्याय,
ज्ञान,
और जो संदूक है जिसके अंदर बहुत कुछ छुपा है, मन्ना है, वो है, वो है ज्ञान। ठीक है, अभी ये जो हारून की छड़ी, हारून की छड़ी का मतलब क्या है, छड़ी का क्या मतलब होता है, हारून के हाथ में छड़ी, इसका मतलब है चुना हुआ याचक, चुना हुआ याचक,
छड़ी का सिंबल है चुना हुआ,
चुना हुआ याचक, याचक, क्योंकि वो छड़ी के द्वारा सब कुछ करता था ना, छड़ी का मतलब मेरे पास अधिकार है,
जैसे मूसा को देती लाठी, वो छड़ी मांगती थी, तुझे काम चमत्कार करना।
तो वो तो हारून तो शारीरिक रूप में था, लेकिन असलियत में परमेश्वर के स्वर्ग में ये मुख्य याचिकाई का काम पता कौन करता है, ये पढ़ लो इब्रानियां 5:6। तो कलीसिया की स्थिति देख लो अभी स्वर्ग में क्या होगी,
इब्रानियां 5:6।
इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तुम मल्किसदिक की रीति पर सदा के लिए याचक है,
सदा का याचक। तो परमेश्वर के स्वर्ग में जो मुख्य याचक है वो पता कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और खाली प्रभु यीशु मसीह ही नहीं होगा, इसके साथ पता कौन होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपको बोला था ना, प्रभु यीशु मसीह क्या है, हेड एंड बॉडी। तो उसके साथ कलीसिया भी होगी, और जिसके बारे में हमने वचन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया, तुम चुना हुआ वंश, याचकों की मंडली। पहला पत्रस 2:9 से फिर से पढ़ लो, 2:9।
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पर सारी याचकों को, याचकों का समाज और पवित्र लोग,
याचकों का
समाज।
तो प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया दोनों ही क्या होंगे, परमेश्वर के स्वर्ग में याचक,
याचकों का समाज, एक संगठन,
याचक। ठीक है, याचकी का काम करेंगे, पहले प्रभु यीशु मसीह और उसके बाद कलीसिया। ठीक है, समझ आ गई हारून की छड़ी का मतलब।
आ गया।
उसके बाद दूसरी जो चीज थी वो थी व्यवस्था की, वो पट्टियां दो, दो है ना, दो पे थी ना। ठीक है, इसका क्या मतलब है, व्यवस्था की पट्टियों का क्या मतलब होता है, न्याय, न्याय करने वाला, जज जिसे बोले, न्यायपति जो न्याय करता है। तो ये कौन करेगा, न्यायपति कौन होगा, न्यायपति होगा प्रभु यीशु मसीह, और उसके साथ न्याय करेगी संसार का कौन? कलीसिया। ये पढ़ लो, प्रेरितों के काम 17:31, दोनों में ही प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया होगी, हेड एंड बॉडी, ठीक है, शरीर और सर।
17:31
प्रेरितों के काम
17:31,
क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिससे वे उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा।
देखो, न्याय न्याय करेगा, वो संसार का न्याय करेगा। अभी न्याय खाली प्रभु यीशु मसीह अकेले नहीं करेंगे, उनके साथ कौन होगा? 1 कुरिन्थियों 6:2 पढ़ लो,
क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ, ना दैत्यगमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी।
फिर से पढ़ो, फिर से 6:2, 1 कुरिन्थियों 6:2।
क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे?
हाँ, पवित्र नहीं है, एक्चुअली संत हैं, संत लोग जगत का न्याय करेंगे। तो
यीशु मसीह के पास
है,
तो हम पवित्र,
तभी
तो ग्रहण
सही है, पवित्र लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। द सेंट्स, डू यू नॉट नो दैट द सेंट्स, सेंट्स शैल जज द वर्ल्ड। संत लोग, संत यानी कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के साथ संसार का न्याय करेंगे, 144,000, ठीक है। तो इसीलिए तो ये पत्रियों, दो पत्रियां हैं, पहले प्रभु यीशु मसीह और फिर कलीसिया, दोनों मिलके संसार का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। तो हेड एंड बॉडी, इसलिए बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु, जब यीशु मसीह की बात आती है तो यीशु मसीह अकेले नहीं है, उसके साथ कौन है? कलीसिया भी है, ठीक है, तो कलीसिया भी उसके साथ होगी। तीसरी चीज है वो मन्ना, सोने का मन्ना। अभी सोना होता है स्वर्गीय, पता क्या, जब इनको परमेश्वर उजाड़ में मन्ना देता था, इनको बोला था कि अगले दिन के लिए नहीं रखना, वो खराब हो जाता था,
उतना
खाओ, हाँ, तो खराब हो जाता था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मन्ना ऐसा है जो खराब नहीं होता है। मतलब क्या है कि आपको ईश्वरीय सद्भाव मिल जाएगा, आपका नाशवान जो चीज है वो अविनाश में बदल जाएगी। जैसे प्रभु यीशु मसीह को वो जीवन मिला है सदा बिना मृत्यु वाला जीवन, वैसे ही कलीसिया को भी वही जीवन मिल जाएगा, ईश्वरीय स्वभाव। ये पहले मिल चुका है, ये वचन पढ़ लो, प्रकाशित वाक्य 1:18, पहले प्रभु यीशु मसीह को मिला और कलीसिया को भी मिल जाएगा।
1:18,
मैं मर गया था और अब देश में युगानुयुग जीवित हूँ। तो ये प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में देख लो, दूसरा पत्रस 1:4।
जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, साथ ही इनके द्वारा हम उस सहार से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ।
तो वो जीवन मिलेगा जिसमें मृत्यु नहीं, ईश्वर जैसे स्वभाव, बिना मौत वाला। और अभी इस संदूक पे ऊपर जो कवर, जो बड़ी मोटी वो लग रही है ना, जिससे वो कवर किया हुआ है, संदूक को ढका हुआ है, वो दर्शाता है परमेश्वर की हेडशिप, के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। वो देख लो, पढ़ लो, 1 कुरिन्थियों 11:3,
परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सर मसीह है,
हर एक पुरुष का सर
मसीह है,
आगे,
और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है।
देखो, तो मसीह का सर कौन है? ठीक है, तो ये है संदूक के बारे में, स्त्री, हाँ, शारीरिक रूप में भी स्त्री, आप जैसे और वैसे कलीसिया, ठीक है। तो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, तंबू के बारे में शुरुआती ज्ञान। और भी बड़ी बड़ी गहरी बातें हैं, लेकिन इसमें जो आत्मिक बातें हैं जो हमने देखी, इसका मतलब ये है। और अंत में वो जो शकीना
ग्लोरी
जो थी, वो थी परमेश्वर की मौजूदगी। ये पढ़ लो यशाया 37:16, वो उन दो जो चेरुबम है ना, जो उनके बीच में रहती थी लाइट आके, निकलो
हे सेनाओं के योवा, हे करूबों पर विराजने वाले इज़राइल के परमेश्वर।
हाँ, करूबियों पे विराजने वाले इज़राइल के परमेश्वर। देखो,
पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, और आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया।
तो ये यही है वो ज्योति जो करूबियों पर आती थी, चमकती थी। डायरेक्टली वचन नहीं है कोई शकीना ग्लोरी के बारे में, लेकिन इसी से पता चलता है, क्योंकि पहला योहन्ना 1:5 में पढ़ लो, पहला योहन्ना 1:5 37:16 बताया था, पहला योहन्ना 1:5 अब पढ़ लो।
जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं।
तो परमेश्वर ज्योति है, वो लाइट है, रोशनी। अभी अंत में क्या देखते हैं हम, अति पवित्र स्थान में एक ही चीज है, बस संदूक। अंदर अलग अलग चीजें हैं, लेकिन है क्या, सब एक ही। इसका मतलब क्या है, जब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ जाके मिल जाएगी। सिस्टर, जब वचन निकल जाता है तब सुन लिया करो, बाद में आप पढ़ सकते हैं रिकॉर्डिंग से। तो जब ये मिल जाएंगी, ये सब क्या हो जाएंगे, एक। क्या हो जाएंगे, एक। जिसके बारे में वचन पढ़ लो, यूहन्ना 17:21 यूहन्ना 17:21
कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है।
तो हाँ, तू मुझ में, मैं सब, हम सब क्या हूँ, एक हूँ। तो देख लो, अति पवित्र स्थान में एक ही चीज है, ठीक है। तो हम भी जब कलीसिया जब पूरी हो जाएगी, तो साथ मिल जाएगी जाके, तो एक हो जाएंगे, जैसे पिता और पुत्र दोनों एक हैं। तो इसी के साथ प्यारे भाइयों और बहन, ये तंबू की बड़ी सुंदर क्लास खत्म होती है। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।